Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, भारतवर्ष में एक बहुत ही महान संत हुए। जब वो अपने अंतिम सैया पे थे, मृत्यु सैया पे, उनके शिष्यों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। सभी शिष्यों ने कहा कि महाराज अंतिम उपदेश दीजिए, तो महाराज ने अपना मुख खोल दिया। अब जब उन्होंने मुख खोला तो शिष्यों ने पूछा कि इसका क्या मर्म है, आपने मुंह क्यों खोला, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। महाराज ने कहा कि मुंह के अंदर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा आपकी जिह्वा दिखाई दे रही है, दांत तो है नहीं। तो उन्होंने कहा अंतिम उपदेश मेरा यही है, जिह्वा देखो जन्म से थी, दांत बाद में आए, लेकिन जिह्वा अब तक है, लेकिन दांत बाद में आए और पहले चले गए, क्योंकि दांत कठोर थे, जिह्वा कोमल थे। यदि जीवन में कोमलता होगी, नम्रता होगी, तो हम लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे, अमर रहेंगे। लेकिन यदि हमारे जीवन में कठोरता होगी, हमारी वाणी में कठोरता होगी, हमारे व्यवहार में कठोरता होगी, तो लोग हमें याद नहीं करेंगे बल्कि हमें कोसते रहेंगे। इसीलिए हम अपने जीवन में नम्रता को अपनाएं, कोमलता को अपनाएं। और एक और पते की बात उन्होंने कही कि देखो दांत कठोर है, वो अपनी कठोरता को नहीं छोड़ता, और जिह्वा कोमल है, वो अपनी कोमलता को अर्थात अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते। कभी कभी जिह्वा जो दांत के नीचे आके कट जाती है, अर्थात दांत काट देता है जिह्वा को, लेकिन फिर भी जिह्वा मदद करती है दांत को। कैसे? जब कभी दांत में कोई कण फंस जाता है, कोई दाना फंस जाता है, तो जिह्वा बार बार वहां जाती है दांत के पास और उस कण को निकालने की कोशिश करती है, जिसके कारण दांत को तकलीफ हो रही है। तो देखें, दांत काट रहा है फिर भी जिह्वा मदद कर रही है, अर्थात अपनी सज्जनता नहीं छोड़ रही है। तो महाराज ने बहुत सुंदर बात कही कि यदि दुष्ट अपनी दुष्टता ना छोड़े तो सज्जन को अपनी सज्जनता भी नहीं छोड़नी चाहिए। मित्रों, यहाँ दांत तो निर्जीव है, लेकिन मनुष्यों के साथ यदि हम सज्जन बने रहते हैं, मृदु बने रहते हैं, तो वो तो सजीव है ना, उनमें परिवर्तन की गुंजाइश है, उनमें अवश्य परिवर्तन आएगा यदि हमने अपने जीवन में, अपने व्यवहार में नम्रता को अपनाया है। तो आइए इसी सुंदर प्रसंग के साथ, इसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। दत्ता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया।
ये मृदुता और कठोरता, दत्ता जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो कठोर प्रकृति के हैं, कुछ को तो मृदु बनना होगा ताकि सभी को मधुर बनाया जा सके।
हमें वहाँ तो कठोर रहना चाहिए जहाँ दूसरे हमें पत्थर मारे, हिमालय की तरह हम कठोर बनकर उन्हें आराम से सहते रहें, बल्कि पत्थर हमसे टकरा कर टूटने लगे, ये कठोरता तो सुंदर है। अन्यथा यदि व्यवहार में मनुष्य कठोर रहता है, तो आजकल संबंधों में टकराव का, डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, एक अनहैप्पी वातावरण जो बन रहा है, अशांति जो बन रही है, उसका मूल कारण बन जाता है। इसलिए संबंधों में, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे ऑफिसों में कर्मचारी और अधिकारी का संबंध हो, हर फील्ड में मनुष्य संबंधों में ही रहता है, अपनी वाणी को कठोर रखने से काम भी बिगड़ेंगे, समस्याएं भी ज्यादा बढ़ेंगी। इसलिए वाणी का सरल होना, नेचर का स्वीट एंड सॉफ्ट होना, जिव्या की तरह लचीला होना, बहुत कोमल, कोमल ऐसा नहीं कि कोई भी चीज उसको नष्ट कर डाले, सेफ्टी भी है। देखिए, ये जो दांत हैं, ये जीभ की सेफ्टी भी कर रहे हैं, तो कहीं कहीं बाह्य कठोरता हमारी सेफ्टी भी करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमें कठोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम अपने और दूसरों के मार्ग में बाधाएं खड़ी करते हैं।
इसे समझने में कई बार, या स्थान कहाँ ऐसा हो जहाँ हम इन चीजों का प्रयोग करें, थोड़ी सी तकलीफ होती है।
एक व्यक्ति है जिसको इमीडिएट क्रोध आ जाता है, इमीडिएटली वो क्रोधित हो जाता है
जी,
और कठोर हो जाता है। ये कठोरता क्योंकि उसके क्रोध से प्रभावित है, ये कठोरता नुकसानदायक होगी। लेकिन एक व्यक्ति काम करा रहा है 10 लोगों से और 2 लोग काम बार बार बिगाड़ रहे हैं, उनको सिखा दिया, उनको समझा दिया, वो दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो काम भी बिगाड़ रहे हैं, ऐसे में क्रोध को अलग रखते हुए, विदाउट एंगर, उन दोनों व्यक्ति के प्रति शुभ भावना रखते हुए कठोर होना, ताकि कार्य वो ठीक से करें, दूसरे लोगों के सहयोगी बने, दूसरे उनसे डिस्टर्ब न हो और काम को क्षति न पहुंचे, ये एक तरीका हमेशा जीवन में अपनाना चाहिए। जहाँ क्रोध ज्यादा हो जाता है वहाँ मनुष्य कठोर कम और काम बिगाड़ने वाला ज्यादा बन जाता है। इसलिए जहाँ आप देखें कि आपको लोग सता रहे हैं या आपकी प्रोटेक्शन का प्रश्न है, आप सिक्योर नहीं हैं, आपको बिना मतलब से लोग डरा रहे हैं, वहाँ कठोर होना अपनी सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो आजकल ये भी बहुत चल रहा है, जो सज्जन लोग हैं उन्हें सताया जाता है, कहीं इनसिक्योर फीलिंग होने लगती है मनुष्य को, वहाँ अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जिसे आत्म सुरक्षा कहते हैं, आत्मरक्षा का अधिकार सभी को होता है, वहाँ मनुष्य को कठोर भी हो जाना चाहिए। तो ऐसे हर फील्ड में अपनी मनोस्थिति को स्थिर रखते हुए जांच करनी होगी, स्वयं पहचानना होगा कि हमें कठोर कब होना है और किस सीमा तक होना है, ताकि हमारा मन कठोर न बन जाए, हमारी नेचर कठोरता की ना आ जाए, अन्यथा हमें जीवन भर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारा अपना मन टेंशन से भरा होगा, हमें कोई प्यार नहीं करेगा, जो कठोर व्यक्ति होता है उससे लोग डरते हैं। तो हमें कठोर भी समय पर और बहुत सॉफ्ट, बहुत स्वीट, बहुत लविंग भी होना चाहिए, ताकि इन चीजों का बैलेंस हमारे जो व्यवहार हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उनको भी ठीक रखे।
कितना और कहां वाली जो बात आती है, इसमें ज्यादातर लोग थोड़ी सी उलझ जाते हैं कि इस चीज में हम कैसे समझें कि कहां तक और कितना। हर एक अपने अपने ढंग से तो करता ही है, लेकिन फिर दूसरों को वो ढंग पसंद नहीं आता, तो समझ में नहीं आता कि वास्तव में इसका बैलेंस कैसे हो सकता है और वास्तविकता क्या है कि कितना रखा जाए।
देखिए, इसमें ये है कि अगर मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान लेता है और वो अपनी मनोस्थिति को बैलेंस में रखना जानता है, दो चीजें हैं, ज्ञान विवेक और स्थिति में सुंदर संतुलन, तो उसकी स्वतः ही समझ में आ जाएगा कहाँ उसे कठोर होना है, कहाँ लविंग रहना है, सॉफ्ट होना है, फ्लेक्सिबल रहना है। और दूसरे लोगों को वो चीज पसंद तब आएगी जब उसके मन में भावनाएं श्रेष्ठ होंगी। किसी व्यक्ति को हर्ट करने की भावना नहीं, मान लो वही उदाहरण, हमले 10 लोग काम कर रहे हैं, 2 काम बिगाड़ रहे हैं, उन्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, उन्हें गिरा दिया जाए, उन्हें आउट कर दिया जाए, नौकरी से हटा दिया जाए, ये इंटेंशन नहीं, लेकिन उन्हें योग्य बना दिया जाए, उन्हें कोऑपरेटिव कर दिया जाए, वो भी अच्छे इंसान बने, क्योंकि आज तो वो गलत काम कर रहे हैं, कल इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर शुभ भावना मन में है कि इनका भी कल्याण हो, ये हमारे अच्छे सहयोगी बन जाएं, हमारा कार्य भी सुचारू रूप से चले, तो ये सुंदर बैलेंस स्वतः ही मनुष्य के जीवन में आ जाएगा। इसे दूसरों को भी कष्ट नहीं होगा और स्वयं भी हम ठीक ठीक निर्णय कर पाएंगे, परख लेंगे कहाँ और कितना कठोर होना।
जी, विनम्रता और कायरता को भी एक समझते हैं, क्या दोनों एक हैं?
कायर मनुष्य वो है जिसका मन बहुत निर्बल हो, बहुत वीक हो, छोटी बात में मनुष्य घबराता हो, छोटी बात में वो डरपोक जैसा हो कि कुत्ते ने भौंक दिया तो डर गया, रात को किसी ने कुंडी भी खड़का दी तो डर गया, अचानक लाइट ऑफ हो गई तो भयभीत हो गया, यह है कायरता। लेकिन नम्रता, जो व्यक्ति बहुत पावरफुल है, जो हर चीज को बहुत अच्छी तरह समझता है, जिसने अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है, वो व्यक्ति होगा नम्र। तो कायरता एक बहुत बड़ी कमजोरी है और नम्रता एक बहुत बड़ी महानता है। नम्रता के साथ शक्ति जुड़ी हुई है, कायरता के साथ वीकनेस जुड़ी हुई है, दोनों में अंतर हो गया।
बिल्कुल दादा जी, मैं मेल की ओर लिए चलता हूँ आपको। ये पहला मेल हमारे पास आया है कल्याण से, गजानन जी का। जब मैं राजयोग करने बैठता हूँ तो मन में नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?
बहुतों के प्रश्न है ये, रोज जब भी फोन कहीं से आते हैं तो 2-4 फोन युवकों के या बड़ों के, माताओं के, इस तरह के जरूर आते हैं कि बहुत सारे निगेटिव विचार चल रहे हैं मन में, अननेसेसरीली चल रहे हैं। तो मैं पूछ लेता हूँ कि भाई ज्ञान मार्ग में आने से पहले आपका जीवन कैसा रहा? तो साफ साफ बताते हैं कि अच्छा नहीं रहा, हम गलत मार्ग पे चले गए थे, हम बुरे संग में फंस गए थे, हमने बुरे बुरे काम कर लिए, वासनात्मक हमारा जीवन रहा, 10 साल रहा, अब हम युवक हैं, अब जब हम मेडिटेशन करते हैं या वैसे ही हम सोने जाते हैं तो वो सीन हमारे सामने आने लगते हैं, वो विचार हमें परेशान करने लगते हैं, क्योंकि हर विचार को तृप्त तो नहीं किया जा सकता सदा ही। अभी इन सब से बचने के कुछ सुंदर उपाय करने पड़ेंगे जीवन में। मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि 6 मास का अपना एक सुंदर प्लान बनाए। हर वो व्यक्ति जो इस समस्या से ग्रसित है, हर वो क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा 95% लोग, चाहे वो राजयोग के मार्ग पर हैं, चाहे राजयोग नहीं कर रहे हैं, इस समस्या से पीड़ित हैं। मैं पीड़ित शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि ये समस्या लोगों को बहुत पीड़ित करती है। कई कई तो ऐसा कहते हैं हम स्वयं को टॉर्चर कर रहे हैं कि हमारे संकल्प इतने ज्यादा चलते हैं, न हमारे चित्त में शांति रहती, न हम एकाग्र हो पाते, न हमें खुशी रहती। खाना भी खाते हैं तो भिन्न भिन्न बातें याद आ रही। वी कैन नॉट एंजॉय आवर फूड आवर डाइट। हम सोने भी जाते हैं, उन्हीं विचारों में सो जाते हैं, फिर स्वप्न उस तरह के आते हैं। हम पढ़ते हैं तो एकाग्रता नहीं होती, बहुत टाइम लगता है, हमारा ग्रेड गिरता जा रहा है। तो एक 6 मास का सुंदर प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा। पहले जो ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें सवेरे उठकर सुंदर चिंतन, अपने लाइफ के बारे में एक सुंदर दृष्टि और योग अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सवेरे सवेरे प्रकृति का माहौल बहुत सत्व प्रधान होता है, मनुष्य का मन भी कंपैरेटिवली शांत होता है। उस टाइम मनुष्य सुंदर विचार क्रिएट कर सकता है, इसलिए अपनी बेड से बाहर आकर, अपने रूम से बाहर आकर थोड़े खुले आकाश में, थोड़ी ठंडी हवा में विचरण करेंगे तो मन में सुंदर विचार जागृत हो जाएंगे। बहुत सुंदर विचार हम क्रिएट करेंगे जिनको हम स्वयं एंजॉय करेंगे, और ये सुंदर विचारों की शक्ति इन व्यर्थ विचारों के फोर्स को नष्ट करने लगेगी। पहली जरूरत, जिसको भी व्यर्थ के निगेटिव फोर्स से अपने को मुक्त करना हो, वो सवेरे उठे। सवेरे माना 4 बजे उठे, मैं नहीं कहता हूँ 2 बजे उठने लगे, 4 बजे रिलैक्स, 10-10:30 तक सो जाए, 4 बजे उठकर अपने को चार्ज करें सुंदर विचारों से। हम बार बार वो सुंदर विचार अपने दर्शकों के सामने रखते ही आते हैं। उठते ही अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग करें, तुमने हमें सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। मिलन हो जैसे उससे, जैसे हम उसे बात कर रहे, तुमने हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर दिया, हमें बहुत भाग्यवान बना दिया, आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए, हम बहुत आनंदित हुए। ऐसी अपने परम पिता से बात करें, इससे हम सवेरे सवेरे अपने को चार्ज महसूस करेंगे और बहुत अच्छी फीलिंग होगी। उसके बाद ईश्वरीय महावाक्य हम रोज सुनते हैं, ईश्वरीय महावाक्य जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं, वो सुनने अवश्य जाना चाहिए। उससे हमें नए विचार मिलते हैं, एक परम सुख प्राप्त होता है, बहुत गुड फीलिंग होती है। ये 2 चीजें अगर कोई मनुष्य कर ले तो बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों पर लगाम लग जाएगी। तीसरी बात, रोज घर में आकर एक टाइम 15 मिनट ज्यादा नहीं अव्यक्त मुरली की स्टडी करें, और कुछ ऐसे विचार उनमें से नोट कर लें, कुछ महान थॉट्स, कुछ बाबा के महावाक्य, कि जब व्यर्थ संकल्प चलने लगे उसको यूज करें, उसको याद करें और व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाए। मान लो पास लाइफ याद आ रही है, वो सीन याद आ रहे हैं, तो क्या करें, अब सुंदर संकल्प क्रिएट करें। अरे ये विश्व तो एक ड्रामा है, इसमें जो पास्ट हो गया वो तो गया, अब उसको याद करने से क्या फायदा, अब तो मेरा प्रभु मिलन हो रहा है, अब तो मैं वो सीन अपने सामने लाऊं, तो जल्दी वो सीन हट जाएंगे, नए सीन सामने आएंगे। या अपने जीवन में जो बहुत सुंदर सीन हुए हैं, बहुत सुंदर घटनाएं हुई हैं, कुछ सुंदर अनुभव हुए हैं, उन्हें याद करने लगे। अरे इन पुरानी बातों को छोड़ो, ये देखो डिवाइन लाइफ है, एक गुड ब्यूटीफुल एक्सेलेंट लाइफ है, इसको एंजॉय करना है, ये करेंगे। और एक स्वमान की प्रैक्टिस ले लें कोई भी, उसमें हम जो हमेशा सजेस्ट करते हैं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, अपने मन बुद्धि की मालिक हूँ, अपने मन से बात करें, जैसे मन एक बेबी के रूप में हमारे सामने खड़ा है, मेरे मन अब तुम शांत हो जाओ, बहुत भटक लिए 10-20 साल, अब परमात्म मिलन का सुख प्राप्त करो, अब अपने अंदर सुंदर विचार क्रिएट करो, तुम्हारे अंदर ग्रेट थॉट, मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स, हैप्पी थॉट्स, पावरफुल थॉट्स का भंडार है, उन्हें जागृत करो। ऐसा अगर 6 मास कर लिया जाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी मिस हो गया तो बड़ी बात हो गई, कभी मिस हो गया, आप लेट सोए, कभी ना उठ पाए, तबीयत ठीक नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन 6 मास का एक प्लान बनाए और अगर सवेरे मिस हो जाता है तो वही चीजें जब उठे तब कर लें, 6 बजे कर लें, इवनिंग टाइम में कर लें, सोने से पहले कर लें। इस तरह अपने को एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है और हमें पूर्ण विश्वास है, हमने देखे ऐसे बहुत सारे केस, बहुत जल्दी जल्दी 1 मास के बाद ही अच्छी इम्प्रूवमेंट होने लगती है और मनुष्य इनसे निजात पा लेता है।
बिल्कुल प्रताप जी, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि योग करने बैठना या राजयोग करना, मतलब करना शुरू करते ही जैसे हमारा मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, हम शांत हो जाएंगे, शायद लोग ये सोचते हैं, लेकिन ये भी एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमें ये प्राप्ति होगी, शायद लोग इस चीज को कम समझ पाते हैं।
आपने सुंदर प्रश्न पूछा है, मैं इसमें जोड़ दूं कि जैसे योग में बैठे हैं तो आत्मचिंतन प्रारंभ करें और ये एक सुंदर फिलोसोफी, ये जो सीक्रेट है इसको समझ लें कि जब हम सुंदर विचार क्रिएट करेंगे तो और विचार समाप्त हो जाएंगे। और मान लो कभी मनोस्थिति ऐसी हो गई कि कोई 2-4 विचार बार बार आ रहे हैं तो स्वमान का लगातार अभ्यास कर लो 5 मिनट, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं स्टेबल माइंड हूँ, मैं तो राज ऋषि हूँ, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, मैं भगवान का बहुत अच्छा बच्चा हूँ, रिपीट करने लगो 5-7 मिनट ये कर लो ताकि टाइम वेस्ट ना हो बैठकर योग अभ्यास करने में। फिर जब बैठें तो आत्मचिंतन प्रारंभ कर दें, मैं आत्मा, विजुअलाइज करने की कोशिश करें 5 सेकंड, मैं पीसफुल हूँ। फिर 5 सेकंड विजुअलाइज करें, मैं प्योर हूँ, मुझे प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, मैं बहुत लवफुल हूँ, मैं बहुत माइटफुल हूँ, मास्टर ऑल माइटी हूँ। ऐसे विचार करते करते आत्मा के स्वरूप को देखने का अभ्यास करेंगे तो योग अभ्यास में शुरू से ही एकाग्रता होने लगेगी। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि एक ही साथ घंटों न बैठें, 10-10 मिनट बैठकर अच्छा अभ्यास करें, कोई कमेंट्री चला लें, सीडीज बहुत मिलती हैं कमेंट्री की, उसमें सुंदर थॉट्स मिलेंगे, क्योंकि कईयों को ये समस्या होती है वो स्वयं थॉट्स क्रिएट नहीं कर पाते, कुछ बाह्य चीजों का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है और उनका मन अपना ऐसा होता है कि वो विचारों को एकदम टर्न कर दें, ये सबसे नहीं हो पाता। इसलिए एक अच्छा सुझाव है कि सीडी चला लें कमेंट्री की, हमारी बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग की हुई है, उससे आपका मन धीरे धीरे उस तरह के चिंतन की ओर चलेगा और मन एकाग्र होगा और व्यर्थ खत्म होगा।
बिल्कुल, मतलब यही बात है शायद ब्रता जी, कई बार लोग अपनी तरफ से नहीं कर पाते तो शायद सीडी बहुत मदद करे। हाँ। और पीस ऑफ माइंड चैनल में भी ब्रता जी सुबह 4 से 4:45 बजे तक और शाम को भी 6:30 से 7:30 बजे तक डिवाइन कनेक्शन प्योर मेडिटेशन का सेशन है, वो भी लोग अटेंड कर सकते हैं जिसमें विजन के साथ सुंदर कमेंट्री आते हैं, वो भी मेडिटेशन में उन्हें मदद करता है।
मैंने भी देखा, एक बार मैंने 3 बजे ऐसे खोल दिया पीस ऑफ माइंड तो देखा बहुत सुंदर सुंदर विजन आ रहे थे, जिनको योग लगाना नहीं आता वो उससे योग लगाना सीख सकते हैं, 4 से 4:45 शाम को 1 घंटा, तो इसका भी बहुत अच्छा फायदा उठाया जाए, क्योंकि कई चीजें देखने से मनुष्य को समझ में आती है, कई चीजें सुनने से समझ में आती हैं, तो ये जो विजुअल हमारे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं इसके द्वारा अच्छा योग करेंगे तो ये पीस ऑफ माइंड उनके लिए वरदान हो जाएगा।
बिल्कुल, और लगातार अभ्यास भी करते रहे जाता है जी, क्योंकि कई बार व्यक्ति थक के कि योग तो हो नहीं रहा है, एकाग्र हो नहीं पा रहे हैं तो छोड़ देता
है। मन की भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं, एक समय होता है दिन में जब उसका योग करने को मन नहीं करेगा, लेकिन दूसरा एक समय आता है जब बहुत मन करता है, वो समय आधे घंटे बाद ही आ सकता है, वो उसके 1 घंटा बाद भी आ सकता है, तो अपनी दिनचर्या में कभी निराश नहीं होना चाहिए। मान लो अब योग अभ्यास नहीं हो रहा था, चलो 2 घंटे बाद करेंगे, और जो ऑफिस में है या अपने बिजनेस में है, चलो अब नहीं हो रहा शाम को करेंगे, सोने से पहले करेंगे, तो एक वो ऐसा समय मनुष्य की समझ में स्वतः ही आ जाएगा कि इस टाइम मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। देखिए ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी विशेष जगह अर्थ वाइब्रेशंस भी हमारी कंसंट्रेशन को बहुत प्रभावित करते हैं, ये प्रारंभिक जो अभ्यास करने वाले उनके लिए बात है, किसी विशेष दिशा में मुंह करके योग अभ्यास करने से कंसंट्रेशन अच्छी होती है और किसी विशेष पोस्चर में बैठकर अभ्यास करने से भी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है।
तो क्या ये सबके लिए अलग अलग होता है?
ये ऐसा होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, फिर भी नॉर्थ दिशा में मुंह करके एकाग्र अच्छा हो सकता है मनुष्य, वो करके देखना चाहिए, अपने घर में ही अलग अलग जगह पर बैठ कर देख लेना चाहिए कहाँ कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है और समय भी खुद पता चल जाएगा मनुष्य को, तो इन चीजों का भी फायदा उठा लेना चाहिए। कईयों को सवेरे स्नान करने से पहले योग बहुत अच्छा होगा, तो कईयों को फ्रेश होने के बाद योग बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहा धो लिए, एकदम चेतन हो गए, तब योग अच्छा लगेगा। कईयों को क्या होता है कि नहाने धोने में और बहुत सारे संकल्प आते हैं, उठते ही वैसे ही बैठने से योग अच्छा लगता है। तो ये हरेक की मन की स्थिति अलग अलग होती है, सबके लिए समान चीज ये है ही नहीं। अपने को खुद देख लेना चाहिए कब किस स्थिति में किस दिशा में मेरी एकाग्रता अच्छी होती है, वैसा ही करना चाहिए।
दूसरा मेल आया है, ये बच्चों का है, ये कहते हैं बिहार गोपालगढ़ आकाश का है, कहता है कि मैं 10वीं में पढ़ाई कर रहा हूँ, मार्च मास में परीक्षा है और मैं पढ़ाई करता हूँ तो भूल जाता हूँ, व्यर्थ भी चलते हैं, जिस व्यर्थ की बात हो रही है क्या करूँ। और ऐसा ही एक प्रश्न ब्रता जी मेल से गौरी ने मथुरा से भेजा है, ये भी 10वीं में पढ़ती हैं, कहती हैं 8वीं क्लास तक तो मैं फर्स्ट क्लास आती थी, अभी 10वीं क्लास में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार चलने लगे हैं, क्या करूं। दोनों 10th के बच्चे हैं, व्यर्थ विचार से परेशान।
हाँ, ये समस्या बहुत बच्चों के सामने आई रही है और कभी कभी उन्हें ये पता नहीं चलता ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ठीक ठाक होते हैं, वो न ज्यादा टीवी देखते हैं न इंटरनेट का यूज करते हैं, और किससे गलत संबंध भी उनके नहीं रहते हैं। ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको भी ये निगेटिव थॉट्स काफी परेशान करते हैं। इसका कारण है आजकल चारों ओर फैले हुए निगेटिव वाइब्रेशंस। ऐसा समझ ले कि हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी का तूफान उठता रहता है सदा ही। अगर हम बहुत अपने को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उसका असर हम पे आएगा ही, और प्रोटेक्शन ये होता है अच्छे स्वमान से। दो चार स्वमान इतने अच्छे हम अपने लिए चुन कर रखें जिसे हमारे चारों ओर पावरफुल ओरा बन जाए, और ये जो बैड एनर्जी चारों ओर से अटैक जैसा कर रही है ना मनुष्य पे, इसके अटैक से हम अपने को बचा सकें। तो यही बात बच्चों के सामने हो रही है। मैं इन दोनों बच्चों को क्या और बहुत सारे बच्चे जिनके सामने ये बात आ रही है कहूंगा, पहले तो बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो 4 बजे उठ के 3:30 बजे उठ के योग अभ्यास करें, क्योंकि एक छोटी आयु में नींद भी 7-8 घंटे चाहिए ही। वो देर तक पढ़ते हैं फिर सोचते हैं 4 बजे उठ के हम मेडिटेशन भी कर लें, फिर नींद आएगी, दिन में थकान होगी, तो अपने ब्रेन को बिल्कुल हेल्दी रखना है, इसलिए नींद भी प्रॉपर हो जाए। अगर आप 5:30-6 बजे उठते हैं तो ओके, और उस टाइम ही थोड़ा सा योग अभ्यास कर लेना चाहिए 15-20 मिनट अच्छा। और अपने को ये 2-4 जो स्वमान है, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, बच्चों के लिए ये स्वमान बहुत काम आएगा, मैं परम पवित्र हूँ, या मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, या मैं विजय रतन हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, इससे चार ओर एक पावरफुल घेरा बन जाएगा, ओरा प्रभा मंडल, ये बहुत चीजों से प्रोटेक्ट करेगा। और जैसे ही आंख खुले इस स्वमान को याद करने के बाद ऐसा अभ्यास कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 7 बार। इसे मैंने देखा बच्चों में जो एक सटिल फियर उभरता रहता है ना, भाई तैयारी नहीं हो रही है, भाई पहले तो मैं बहुत होशियार थी 8वीं तक, अब मैं बहुत नीचे आ गई हूँ, पता नहीं मेरे से क्या हो रहा है, तो एक सटिल फियर काम करने लगता है। इन दोनों अभ्यास से वो फियर नष्ट होने लगेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं निर्भय हूँ, फियरलेस हूँ। इसको करने से एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी माइंड में प्राप्त होगी। ये अभ्यास उठते ही कर लेने चाहिए, और भविष्य का ज्यादा डर नहीं रखना चाहिए, पता नहीं क्या होगा एग्जाम में। बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास, पता नहीं क्या होगा, कैसे पेपर आएंगे, पता नहीं हमारे नंबर कितने हैं, ये नहीं। कल परसों एक बात हो रही थी एक युवक से 12वीं में, उसको यही डर, पता नहीं मेरे नंबर कम ना हो जाए। इसे एक संकल्प ने उसको इतना परेशान किया हुआ था कि उसकी पढ़ाई में कहीं भी एकाग्रता नहीं हो रही थी। उसकी माँ लाई और माँ भी उसको समझा रही थी, बेटा अच्छा सोचो। फिर मैंने उसको अच्छी बातें सिखाई कि जो तुम बार बार सोचोगे उसको तुम क्रिएट करोगे, उसका निर्माण होगा। तुम ये सोचो मेरा ग्रेड बहुत सुंदर आएगा, मेरी फर्स्ट क्लास आएगी, मेरे इतने मार्क्स आएंगे, 70% तो आएंगे ही। तो ऐसे गुड संकल्प करने से, पॉजिटिव संकल्प करने से बहुत अच्छा रहता है। तो सभी इन दोनों बच्चों को मैं कहूंगा सवेरे उठ के ऐसा थोड़ा थोड़ा करें, और अपने मन को बिल्कुल पॉजिटिव कर दें कि हमारे साथ सब कुछ बहुत सुंदर होने जा रहा है, तो इनकी एकाग्रता अच्छी हो जाएगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रता जी, इन्हें बल मिला होगा कि सचमुच अब हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो याद नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और भी शायद प्रकाश की इस विषय पे आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भ्राता जी जो एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि व्यवहार में, जीवन में हम सब रहते हैं, और महात्मा जी के सुंदर संदेश से हमने शुरुआत की थी आज की। कठोरता यदि है जीवन में तो कहीं ना कहीं हम अपनी सफलता से दूर होते चले जाते हैं, या परिवार में भी समाज में भी बिखराव आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मृदुता को अवश्य अपनाएं, दोनों का बैलेंस रखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन नम्रता सचमुच अपने आप में बहुत विशेष गुण है। कहा जाता है झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। यदि हम अकड़े हुए हैं तो वास्तव में लोग हमसे दूर दूर भागते हैं। यदि हमें विनम्रता है तो हम समाज की बहुत सेवा भी कर पाते हैं और लोगों के दिलों को भी जीत पाते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा जो फलदार वृक्ष होता है वो झुका रहता है, लोग उसे पसंद करते हैं, और जिसमें फल नहीं होता वो अकड़ा रहता है लेकिन किसी काम का भी नहीं होता है। अब हमें देखना है कि हम अपने जीवन में किस चीज को शामिल करना चाहते हैं। विनम्रता सचमुच आपको बहुत आगे बढ़ाएगी, आपको जीवन में सफलता प्रदान करेगी और साथ ही साथ लोकप्रिय और प्रभु प्रिय भी बनाएगी। तो जिहवा की तरह कोमल बनिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।